फिर अगली चीज़ देखिए, इतेदाल और मियाना रवि। मुझे ऐसे लग रहा है ये एक खूबी दूसरे से जुड़ी हुई है। अल्लाह ताला हमें इतेदाल सिखाते हैं, बैलेंस रहो, अदल करो, मियाना रवि रखो, अपने अंदर सुकून लाओ। ज़कात एक मोमिन के और इतेदाल और मियाना रवि की सिफत पैदा करती है। फरमाए वल्लज़ीन इज़ा अन्फ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़तुरू वकाना बैना ज़ालिका क़वामा। जब वो खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची, बेजा इसराफ और बुखल से गुरेज करते हैं, बल्कि एतदाल का रास्ता इख्तियार करते हैं। क्या ये बात पिछली बातों से जुड़ी हुई है? एतदाल कब जाता है? जब शो ऑफ का कल्चर बढ़ता है। मियाना रवि से भड़के लोग आगे कब जाते हैं? कर्जों के बोझ में कब जाते हैं लोग? जब वो एतदाल से आगे बढ़ते हैं। बड़े लोग क्या कहते थे? चादर देखो तो पांव फैला लो। आज कहते नहीं, चादर नहीं देखो, बैंक देखो, लोन देखो, कर्ज देखो। यानी ये काम मारूफ बात है जो मुझे किसी ने बताई कि इस वक्त अमेरिका में जो एक शादी होती है तो पेरेंट्स उसके बाद $50,000 के मकरूज हो जाते हैं। $50,000 आप अपने साथ जरब देकर देख लें, आपके तो कई लाख बनेंगे। एक शादी बंदे की कमर तोड़ के रख देती है। किसी ने कहा अभी शादी का कर्ज नहीं पूरा हुआ तो लड़की घर आ गई है। अल्लाह ताला कहते हैं तरीके से काम करो, अपने आप को उछालो नहीं। आप देखिए छोटी छोटी चीजों में इसराफ होता है। आधा आलू छीला, छिलके इतने मोटे हैं, जो असल चीज थी वो छिलके के साथ फेंक दी और उसमें से किया क्या। आप देखिए एक औरत किचन में खड़ी होके भी इसराफ से बच सकती है। टूटी खोलते हैं हम, कितनी खोलते हैं। और मुझे जितना ये एक बटन से चार लाइटों का जलना चुभता है, मैं सोचती हूँ पहले हम सिर्फ एक ट्यूबलाइट होती थी घरों में, उसको भी बचा बचा के जलाते थे। और मेरे जाती गुमान में ट्यूबलाइट जो होती है ये कम बिजली लेती है, बल्ब ज़्यादा लेते और होते भी पीले हैं। आप देखिए घर, मस्जिदें और जो भी जगह होंगी ओपन, एक बटन के साथ पूरी छत खुल जाती है। मुझे दिन में कई दफ़ा ये चीज़ चुभती है, ये कैसे होगा, इसको कैसे बचाएं, ये कम कैसे हो। लेकिन आज चूंकि खुला है ना तो हमें परवाह नहीं है। आधा खाया आधा फेंका, ब्रेड के किनारे मैंने एक बच्चे को देखा तो वो माँ, माँ कितनी समझदार है, मैं तो हैरान उस माँ पे हूँ कि जो अपने बच्चे को बोटी तक खिला रही है, रोटी खिला रही सब है और ब्रेड के किनारे उतार के फेंक रही है। नहीं ये नहीं खाता, तो चूंकि आपने आदत नहीं डाली तो वो कैसे खाए। और बच्चे भी फिर वो बीच में से सैंडविच खाते हैं और वो हार सा बना देते हैं कि अम्मा बाप ये गले में पहन लें। आप बताइए क्या ब्रेड के किनारे इतने सख्त होते हैं कि आपके बच्चे ना खा सकें? क्या हो गया आज हम मुसलमानों को? इतना खाना घरों में मैंने जाया होते देखा है, अल्लाह की बना। खराब करते हैं पहले फिर फेंकते हैं, पकता जाता है और पिछला पड़ा रहता है, पिछला बचता रहता है और आगे जाता जाता है। तो आप देखिए छोटी छोटी चीजों से ये चीजें शुरू होती हैं। इसराफ से बचना, अल्लाह को इसराफ नहीं पसंद। किसके भाई होते हैं मुसरिफीन? शैतान के भाई। तो जो शैतान का भाई होगा वो कहाँ जाएगा? ये जो आज महंगाई का जोर है और जो आज पूरी नहीं पड़ती और आज जो लोग परेशान हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ही है कि आज हम एतदाल से ऊपर जाके काम करते हैं। कोई बात इस पे आप में से कहना चाहे, कोई प्रैक्टिकल चीज़, कोई मुझे ही बताएं, कोई किसी किस्म का इसराफ, कोई चीज़ जो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कि इससे हम कैसे बचें। खास तौर पे मैंने तो बच्चों के साथ ही माओं के मामले में देखा है कि बच्चों के घरों में चीज़ें बहुत ज़ाया होती हैं। आधा खाया आधा फेंका, खिलौनों का जो इसराफ मैंने देखा है, पूरे घर में बैठने की जगह नहीं होती, इतने खिलौने पड़े होते हैं। एक आधी चीज रखें, बच्चा खेले, आज एक दे दी, कुछ दिन खेल ले, फिर अगले हफ्ते में कोई दूसरी दे दे, महीने में एक दफा एक खिलौना नया दे दें, इट्स ओके। आप 10 चीजें रोज बच्चे के सामने रख दें, उसका दिल भर जाएगा। और यकीन करें बच्चों वाले घरों का गंद मैंने नहीं कभी खत्म होते देखा। सामान ज्यादा, चीजें कम है। जी आप इधर से रेशमा जी।
तो वो मैं फिर उन्हें समझाती हूँ कैसे जो है ना ना किया करना।
जी आप
तो
देखे ना, मेहनत उतनी हुई ना, किसान ने हर दाने पे मेहनत की। ये जो बात कह रही है, मैंने कई लोगों को ये बात बताई है कि जब हम लोग पाकिस्तानी खाने के तौर पे चावल पुलाव बिरयानी बनाते हैं, लग जाते हैं नीचे, बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ एक छोटा सा मग या कप, आधा कप पानी का उसमें डाल के छोड़ दें, उसके बाद क्या करें आप? वो कहेंगे तो गल गए। उसको दोबारा चूल्हे पर रखें, उसको 2-3 मतलब की टेम्परेचर पे छोड़ दें। आप देखिए थोड़ी देर में वो पानी सूख के वो सारे चावल उखड़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल चावल हो जाएंगे। और बाद दफा एक पूरी प्लेट निकल आती है। किसी को मैंने आटा गूंथते देखा, वो हाथों में भी आटा उसमें भी आटा, तो उन्होंने निकाल के बोल में रखा, तो मैंने कहा आपको पता कि एक पूरी रोटी का आटा आपके हाथ और बोल इसको लगा, इसमें खुशका डालें अपने हाथ को उसमें मल के, तो इसका एक अलग पेड़ अपने। और वाकई मुझे ना तो नहीं कर सकती थी, तो वो देखा तो वो पूरा एक पेड़ है कि गोली बना के रखे, और नहीं तो वो सिंक में जाना था। सोचे आप, देखिए कि एक एक जर्रे के ऊपर मेहनत होती है, कितनी मेहनत से। आप यहां नॉर्वे में बैठे हैं तो यहां तो नहीं कुछ उगता ना, कहां से चला, कहां आया, किसने लिया, उसको दिया, उसको दिया, इसको दिया, तो हमेशा अपने आप को छोटा रखे। और ये चीजें कब आती हैं, जब अपनी हैसियत नजर आती है। ये मत देखे मेरी जेब में कितने हैं, वल्लाह ही इससे कभी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जेब में हैं कितने, बैंक में कितने, आदत बन जाती है। बास लोग बेचारे हैंड टू माउथ ही होते हैं, लेकिन जाया फिर भी बहुत करते हैं। जी आप वो सबसे मजे के होते हैं, सारा कुछ तो उसके अंदर गया होता है।
और हम मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जो देखचा होता है उसमें सालन लगा होता है, तो वो इससे होता है रबड़ का, वो इस इलाके पर
जी
उसके
जी
साथ साफ करके, तो फिर मैं वो कह रही हूँ, तो इस उसके साथ जरा भी नहीं रहता। तो उस वक्त को भी ये बात ना बड़ी अच्छी लगी, तो वो भी ऐसी करती है कि मतलब जरा भी हम खाना दोनों जाया नहीं करते
बिल्कुल। आप दो नवालों के साथ अपनी हांडी को पोंछ ले। अच्छा, बाज लोग कहते हैं ना, आप खाना पक गया अब इसको छोटी हांडी में डाल दें, फिर डोंगे में डालें। मैं कहती हूँ अल्लाह के लिए ना करें, आधा उसमें चला जाना है, आधा उसमें चला जाना है, एंड पे वो डोंगे में जब जाना है तो ये इसका 1/3 रह चुका होगा। सच्ची बात है, आप खुद आजमा के देखें, बर्तन ही ना बदले। मैं आपको अपना बताऊं, आप मानेंगे नहीं कि अक्सर मैं खाना जिसमें पकाती हूँ ऐसी चीज में ही बनाऊंगी जो सर्व भी उसी में कर दूं, सिर्फ इस डर से इससे उधर पलटा तो कुछ ना कुछ तो जाएगा ना, ऑयल ही नीचे का जाया हो गया। क्यों जाया हो, आप उस ऑयल को आटा का पेड़ा लेकर उसमें थोड़ा सा मल के उसको रोटी में डाल लें, लेकिन आप कहाँ हक पहुंचा। तभी देखिए हमारे सिंक क्लॉग, हमारे गटर बंद, खाना पकाने किचन, तो किसी के साथ आप एक दिन खड़े हो जाएं आपको उस 90% उसकी शख्सियत समझ आ जाएगी। आज से आप लोग भी, मैं भी अपने आप को देखूं, हर एक में गुंजाइश होती है, मेरे में तो बीसियां होंगी, मैं तो इतना काम ही नहीं करती, काम तो सारा आप ही लोग करते हैं, लेकिन एक एक चीज पे नजर रखा करें। और देखिएगा इंशाल्लाह इसी से केयरफुल होना आएगा आपको भी, और फिर किसी के मुंह में डल जाए, आपका दिल नहीं करता किसी दूसरे को खिला दीजिए। जी लाइन शकर तुम लाजीद अन्नकुम, रोटी लोग यूं फेंक देते हैं, आप देखिए जूं ही रोटी बचे, बच सकती है। वैसे एक सही अंदाजे की औरत के घर की रोटी बचनी नहीं चाहिए, आपको पता ही होता है मियाँ क्या खाते हैं, बच्चे क्या खाते हैं। अगर बच गई फौरन उसको बिल्कुल सीधी करें, जिप लॉक जो उसमें डाल के फ्रीजर में डाल दें, फ्रिज में नहीं रखें, फ्रिज में चीज सूखती है, वो पानी कंडेंस होता है, फ्रीजर में जाएगी ना वो रोटी जैसी थी वैसी जम जाएगी। आपको जिस वक्त खानी है आप अपने पैन को हल्का सा गर्म करें, या जहां भी रखनी है आप यकीन करें फ्रीजर से सीधी वो रोटी लेकर आए, कुछ भी उसको ना लगाएं, आप सिर्फ उसको सेक लगने दें, देखिए वो ऐसे नरम हो जाएगी जैसे अभी बनी है। चीज को फ्रिज में रख के पुराना करने से बजाय बेहतर है जो बचे उसको फ्रीज कर दें। खाना भी अगर बचते ना कभी, तो खराब किस्म के बर्तन यूज ना करें, शीशे के, पायरेक्स के, ढक्कन वाली चीजें बहुत सी होती हैं। आपका जो खाना बच गया उसको पूरा साफ करें, उसमें डालें, फ्रीज कर दें। आप रात का नहीं दिल कर रहा, आप फौरन नहीं दिल कर रहा, 2 दिन बाद वो निकाल कर उसको दोबारा गर्म कर ले। तो बहरहाल ये चीजें आज तो मेरे हले लोगों को बहुत अजीब लगेंगी कि ये क्या छोटी छोटी चीजों में दिमाग लगाएं, हमारे ऊपर बहुत है। लेकिन अगर आपने अपने बच्चियों को ये चीजें सिखाई, मुझे यकीन है कि अगले घरों में जाकर ये दूसरों के लिए कम अज कम दर्द सर नहीं होंगी। मैंने जो चीज देखी है आज के दौर में, इतना इसराफ है, बात तो बढ़ती जाएगी, बच्चियों ने कभी ये कुछ देखा ही नहीं होता। आप यकीन करें पर्सनल यूज की चीजें, एक माँ कहती है मेरे घर में जो टॉयलेट रोल है ना, वो मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे क्या बताया कि एक दिन के शायद 2 या 3 रोल जाते हैं। मैंने कहा कितने लोग हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक 3 बच्चे 5 लोग हैं घर में। कहती मेरे बच्चे यूं रोल लेते हैं और उसको यूज करते हैं और फेंकते हैं। डस्टबिन कहती है मेरी इतनी भरी होती है, और मैंने देखा कि ये बात आगे तक जाती है। अब ऐसी बच्चियों के पैंपर्स हर 15 मिनट पर पैंपर बदल रही है, अकल है कोई नहीं है कि दूध पिलाने से पहले अगर चेंज कर लिया या बाद में, अभी किया नहीं, दूध पिलाया बच्चे ने फिर मैला किया, अब वो इतना सा उसको मैं, एक एक बच्चे का मैंने आधे आधे घंटे में पैंपर बदलते देखा है, और एक एक दिन में 8-8, 10-10 पैंपर एक बच्चे की माँ को मैंने खुद बदलते देखा है। तो वो किस पल्ले में जाते हैं, 8 पैंपर कितने के आते हैं, आप सोचिए कि ये चीजें देखने की हैं। टिश्यू पेपर आपके घरों में, आप वर्क टॉप जो यूज करते हैं, करें, सुकून से करें। मैं आपको ये नहीं कह रही खुदा के लिए कि आप गंद मचा दें, लेकिन जाया ना करें। चीज ऐसी ले जो रीयूजेबल हो आपके पास। आजकल सहूलतें जो इतनी है, एक दफा किया यूज फेंक दिया, लेकिन आप देखें कि ये धुल सकता है, कपड़ा है ना, इसको धो लीजिए। चले आप वो कहते हैं ये इसको फेंक दें डिस्पोजेबल, आप कम से कम उसको एक या दो बार तो दोबारा यूज कर ले। तो ये तो बड़ी इसराफ है, यहां से उठ के बाजार जाना कोई आसान काम है, और लाएं और एक दफा आप उसको करें और फेंक दें, ये तो चीज आपको अपना ही लगता है कि नुकसान होगी।
एक वोगन अब 3-4 बच्चों को बहुत है ना, लेकिन अब वो लड़का हो तो फिर उसकी वो ब्लैक या ब्लू हो, लड़की हो तो पिंक हो, और इस तरह की चीजें। तो मुझे बहुत इस बात पे, मैंने कहा आप सिर्फ एक दुनियावी छोटी मोटी, वो जब बड़े होंगे तो उनको तो परवाह ही नहीं होनी इन चीजों
नहीं,
की।
आपने यहां से उनको कलर कॉन्शियस कर देना। पहले तो इंसान है, अगर नहीं है तो अगर कोई चिड़िया कोई जानवर है कम से कम, लेकिन फेंकने से तो बहुत अच्छा है कि किसी के मुंह में डल जाए। ठीक है, इंशाल्लाह जी। आप
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी बहू है सारा, वो अपने बच्चों को ऐसे सिखाती है कि पेपर ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना, तो वो पेपर फाड़ के आधा इस्तेमाल कर दिया दे
मेरे
देती
पास
है।
एक नैपकिन है घर में पड़ा हुआ, अभी भी मैंने देखा है, तो वो किसी ने मुझे दिया तो मैं एकदम देखा, तो ये वहां की बात है, अमेरिका में थी मैं ना, तो उन्होंने रखे हुए थे, तो मैंने कहा ये तो पाउंड्स पड़े हुए हैं, तो वो देखा क्या कि नैपकिन था तो पाउंड्स के साइन ऊपर बने ना, पाउंड जो यूके की अमाउंट है, तो वो डला है। तो मैंने कहा ये क्या, तो कहती मैं पाकिस्तान जा रही थी तो मुझे किसी ने दिया, वहां जाके बच्चों को नोट बांटना ना, बच्चों को नकली नोट अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा मैं एक ले लूं, कहती जरूर आप सारे ले लें सर। मैंने कहा मैं ये दिखाऊंगी कि इस वक्त इस पे पाउंड साइन है, तो आप इसको हाथ मसल के फेंके तो आपको लगेगा। और मैंने उसमें गिने, वो 50 पाउंड का एक नोट है ना, तो तकरीबन मेरा ले के 8 थे उसके ऊपर। तो मैंने कहा देखिए इस वक्त कागज पे सिर्फ तस्वीर बनी है, तो हमें फीलिंग आ रही है कि हमने इतने पाउंड फेंके, लेकिन देखा जाए तो ये पैसों का ही आता है ना, हम असली नोटों से तो हाथ नहीं पोंछते। तो फिर मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा सेशन भी रिकॉर्ड किया कि बाज दफा हम भूल जाते हैं कि ये चीजें वाकई पैसों की आती हैं। तो बहरहाल इन चीजों से आप देखेंगे कि कम खर्चे होंगे घरों के, सुकून भी होगा। सबसे बड़ी बात मैंने देखा है कि ट्रैश बहुत कम होता है। आप अपने काम करने के तरीके को अपने ट्रैश से पहचाने। जिन घरों का ट्रैश ज्यादा है, मान लीजिए इसराफ होता है, एक की जगह 4 चीजें, प्लेटें, नैपकिन, फिर फालतू चीजें फेंकते हैं, और जो लोग बड़ा संभाल संभाल के इस्तेमाल करते हैं उनका ट्रैश बहुत कम होगा। छिलके ज्यादा उतारेंगे सब्जियों के तो ट्रैश ज्यादा होगा, कम उतारेंगे तो वो कम होगा। तो इस सारी चीजों से आपका घर भी साफ रहता है अल्लाह के हुक्म से। बस घरों में सिर्फ टिश्यू पेपर गिरे होते हैं जी। और आप देखिए एक बच्चे का दूसरे को दे दें, इकट्ठे बिठाएं आप। मैं कहती हूँ अगर आप इसकी भी आदत डालें ना, 3 बच्चे हैं आपके घर में, 2 हैं, आप एक बड़ी प्लेट में रखें खाना और उन दोनों को बिठाएं, बेटा मिलके खाओ, क्या मुश्किल है? 2 की जगह आपको 1 प्लेट धोनी पड़ेगी, उन दोनों को भी होगा साथ खा रहे हैं, और साथ खाने से प्यार बढ़ता है, माने ना माने। एक प्लेट में बच्चे खाएंगे, वो छोड़ेगा वो खा लेगा, और आपको होता है कि साथ खाने से खाया भी ज्यादा जाता है। आप अकेला रखें, दोनों ने इतने तक टुकड़ा छोड़ देना, अब आप खाएंगे या तो फिर माँ खाए, बच्चा नहीं खाता फिर आप खाइए, फिर उसको फेंकिए नहीं। और कुछ बच्चे तो आप देखिए किसी के घर जाएं गारा लेकर खून जलेगा, वो पकड़ के नैपकिनों के साथ खेलते, और माए मना ही नहीं करती, बड़े प्यार से कह दिए मत करो कुछ नहीं करो, और वो पूरा डब्बा ही बाज़ दफा खाली कर देते हैं।
कहते हैं जो मैं पेपर लेता हूँ तो मुझे चाचू की बात याद आ जाती है, तो मैं लपेट देता हूँ कि मैंने बाकी नहीं लेना।
बिल्कुल,
तो ऐसे अच्छा वो हिम्मत से बोला।
बिल्कुल, और आप इस पे अपने बच्चों के साथ बैठ के ना मिलके कैंपेन करें, बेटा चले हम इस तरह सेविंग करते हैं। जैसे एक माँ थी तो उन्होंने कहा हमने अपने घर का कर्जा खत्म करना है ना, तो अब इस पे छोटी छोटी चीजों को सामने रखा, तो फिर कहते कभी जरा सा भी कुछ बच्चों की ख्वाहिश कभी होती है ना, कुछ नहीं पिज्जा खाना है आज को, तो नहीं दूसरे बच्चे नहीं नहीं हमने अपना लोन उतारना है तो हम नहीं करेंगे। तो और इससे आप देखिएगा मिजाज में ठहराव आता है। ये जो हर यू 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 करने वाला काम है, ये मिजाज की ये बुर्दबारी तो नहीं है ना, ये मताना तो नहीं है ना, इसमें तहमुल तो नहीं आ रहा, तो ये एक लाइफस्टाइल बन जाता है। आज तो वैसे एंग्जाइटी का दौर है, इसी से फ्रस्ट्रेशन दूर करते हैं लोग। तो बहरहाल बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है आगे हमारे पास, इस्तकामत। ये मुझे लगता है कि अब खुलासा है पूरी बात का जो अभी तक हमने देखा। जब इंसान के अंदर सब्र की सिफत मौजूद होती है तो इस्तकामत की सिफत भी पैदा होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा मुझे एक ऐसी नसीहत फरमा दें कि किसी और से पूछने की जरूरत ना रहे। आपने फरमाया कुल आमंतु बिल्लाही सुम्म इस्तकिम, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया और इस पर इस्तकामत इख्तियार करो, यानी डट जाओ। कुरान मजीद में है फलिजालिका फदउ वस्तकीम कमा उमिरता वला तत्तबी अहवाअहुम। दीन की दावत में लग जाओ और जिस चीज का तुमको हुक्म दिया गया इस पर डट जाओ और लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। और फरमाया सूरह हामिम सजदा की आयत है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अलैहिमुल मलाइका तो अल्ला तखाफू वला, या अल्लाह है इसको लिफ लगा लीजिए साथ, अल्ला तखाफू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुवदून। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और इस पर जम गए, पस इन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और इनसे कहते हैं ना खौफजदा हो और ना ही गम खाओ और तुम्हें बशारत दी जाती है इस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया। तो हकीकत यह है कि इस्तकामत फरिश्तों की मदद को बुलाने का नाम है, इस्तकामत फरिश्तों की दोस्ती को पाने का नाम है, इस्तकामत बेखौफ जिंदगी को पाने का राज है और इस्तकामत बेगम जिंदगी की नवीद है। जितना आप दीन पर जमते जाएंगे उतनी आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी। पीछे हमने सबर पढ़ा था ना, तो सबर की इंतहाई सूरत इस्तकामत है। देखिए हम दीन की बात तो करते हैं फिर जम नहीं पाते, हम थोड़ा सा काम करके फिर पीछे हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर इस्तकामत नहीं होती। तो कोई काम करना और फिर उस पर जम जाना, उसको करते ही रहना, ये मतलूब है। अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि अल्लाह को वो काम अच्छा लगता है जो कि अदवमुहा वाइन कल्ला, दवाम के साथ हमेशगी के साथ किया जाए, चाहे वो काम थोड़ा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो लिहाजा दीन की असल खूबसूरती इस्तकामत है। फिर आप देखिए इस आयत में दावत के साथ इस्तकामत की बात है, यानी दीन की दावत कभी कभार देना और बात है, लेकिन जम जाना इसके ऊपर अपने आप को लगा देना ये इस्तकामत के बगैर मिलता ही नहीं है। दूसरी बात इसमें क्या दिख रही है, ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। हकीकत है कि इस्तकामत के रास्ते की रुकावट ख्वाहिश। छोटी सी मिसाल देती हूँ, आप डाइटिंग करना चाहते हैं, डाइटिंग पर इस्तकामत कब आएगी, जब खाने की ख्वाहिश पे काबू पाएंगे। हमारी डाइटिंग कब टूटती है, जब हमारे सामने चावल आ जाते हैं। मैंने देखा हम देसी लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी पुलाव बिरयानी, हम कहते हैं मारे भाड़ में कोई बात नहीं, जरा मैं थोड़े से चक्कर और लगाऊंगी पुलाव लेकर आओ, है तो इस्तकामत नहीं रहती ना। तो दीन पर भी हम बाज दफा चल रहे होते हैं अल्लाह के हुक्म से, ये तो नहीं है कि हम नहीं चलते, लेकिन जब कोई ऐसा मौका आ जाता है जिस वक्त हमें किसी के नाराज होने का डर होता है, किसी की दिल आजारी का ख्याल होता है, वैसे में कोई इतनी परवाह हो ना हो किसी की खुशी की, लेकिन उसकी गलत बात को हम सिर्फ इस शौक में मान लेते हैं कि दिल भी तो नहीं ना फिर तोड़ना चाहिए, दिल भी तो ना किसी का बुरा हो। तो इस्तकामत बड़े सब्र की बात है। ये सिफात इंसानी अखलाक की बुनियादें हैं जिनके बगैर इंसानियत की तकमील नामुमकिन है। यानी ये जितनी सिफात अभी तक हमने पढ़ी हैं इन सब को जमा कर लें तो इंसान इंसान बनता है। आप तसव्वुर में लाएं कि ये सारी चीज़ें किसी इंसान में 100% आ जाएं, तो उस इंसान के बारे में लोगों की क्या राय हो जाएगी, बेहतरीन इंसान होगा। हिल्म भी है, आजजी भी है, इसराफ भी नहीं है, इस्तकामत भी आ गई, सब्र भी है। तो वाकई ऐसे बंदों से फिर अल्लाह वास्ता डलवाए, ऐसे लोगों से अल्लाह आपको मिलाए कि जिनका अखलाक इतना प्यारा है कि ना उनके बोल कड़वे, ना उनकी बात कड़वी, ना ताने देते, ना गुस्से में चीखते चिल्लाते, तो दुनिया आपकी जन्नत बन जाएगी। आज लोग हमारे इर्द गिर्द रहने वाले अमूमन किन बातों से दुखी होते हैं, जो इन चीज़ों से अपोजिट होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इनातु मिनल्लाह वल अजलतु मिनश शैतान। मामले को आहिस्ता आहिस्ता हिकमत और ठंडे तरीके से निपटाना अल्लाह की तरफ से होता है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है। तहारत इफ्फत ये सब इबादत नमाज के रास्ते से आती हैं। ज़कात इंसान में जो सिफात पैदा करती है इनमें एक तवक्कुल है। एक सिफत तो ये है कि माल को जमा करते जाएं और माल पर भरोसा हो कि इस माल के जरिए से मेरा काम चलेगा, ये माल मेरी जानो इज्जत की हिफाजत करेगा, इसी पर मेरी बका का इन्हिसार है, इस माल से मैं इलाज कराऊंगा। यकसब अन्नमा लहू अखलदह, वो ये समझता है कि इसका माल इसे हमेशा हमेशा कायम व दायम रखेगा। तो मालूम हुआ कि अगर मालो असबाब की शदीद मोहब्बत को दिल से निकाल दिया और फिर भरोसा अल्लाह पर किया तो इसको तवक्कुल कहते हैं। मालूम यह हुआ कि भरोसा माल पर नहीं अल्लाह पर है। तवक्कुल यह है कि असबाब को इस्तेमाल किया लेकिन भरोसा असबाब पर नहीं बल्कि असबाब के पैदा करने वाले पर। इसको हाईलाइट करें, मीन्स को यूज करें लेकिन मीन्स पर ट्रस्ट ना रखें। असबाब इस्तेमाल करें और भरोसा मुसब्बबुल असबाब यानी अल्लाह पर करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसे काफी हो जाता है। रोजा एक सिफत पैदा करता है जिसे हम सबर कहते हैं। सबर को हम जरा सा आगे बढ़ाएं तो ये शुजात बन जाता है। इसीलिए कुरान पाक में जहां शुजात का लफ्ज आया वहां सबर का लफ्ज आया। वस्साबिरीन फिल बासाई वद्दुर्राय वहीन अलबास, वो लोग जो सबर करने वाले हैं तंगी के आलम में, खुशहाली के आलम में और जंग के आलम में भी, तकलीफ के आलम में, बीमारी के आलम में और जंग के आलम में भी सबर करने वाले हैं। जंग के आलम में सबर करने का ये मतलब है कि मैदान जंग में डटा रहे। और इसी सबर की कैफियत से एक और खसूसियत पैदा होती है और वो इस्तकामत है। क्या पता चला इतनी बातों से कि जो हमारी इबादत है ना उसका असर हमारे अखलाकियात पे होता है। सबर, नमाज, रोज़ा, ये सब कुछ आपस में जुड़े हुए हैं। जिसकी इबादत में रंग होगा ना वो ज़रूर अच्छे काम करेगा। और आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप और मैं इबादत में सच्चे दिल से लगेंगे ना, शऊर के साथ नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से जो बात हो रही है उसको महसूस करेंगे, तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी, अल्लाह के हुक्म से आएंगी। आप और मैं कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते भी बना देगा। अच्छा, अब ये जो हमने पढ़ी ना ये तो पॉजिटिव थिंग्स थी, ठीक है। गैर पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें क्या हैं जो इससे ऑपोजिट है? मसलन हमने पढ़ा कि म्याना रवि हो, ऑपोजिट क्या होगा इसराफ। हम कहते हैं लिल्लाहियत एहसान हो, अल्लाह के लिए करना, इसका ऑपोजिट क्या होगा? तबजीर, दिखावा, शो ऑफ। तो चंद चीज़ों को सिर्फ एक खुलासे के तौर पे देख लेते हैं कि इसराफ, तबजीर और तर्फ, ये तीन चीज़ें क्या हैं। म्याना रवि और एतदाल के मुकाबले में एक और बहुत बुरी सिफत है, वो क्या है इसको हाईलाइट कीजिएगा, गलत जगह पैसा खर्च करना। बात समझे? पैसा गलत जगह पे इस्तेमाल करना, फजूल खर्ची या बेजाय खर्च करना, तीन तरह से है। दुनियावी इस टॉपिक के मुताबिक आप अपनी शॉपिंग लिस्ट को देखिएगा, अपनी शॉपिंग हैबिट्स को देखिएगा। तीन चीज़ों में एक चीज़ इसराफ है, दूसरी तबजीर है और तीसरी तर्फ है। मुतरफीन का लफ्ज़ कुरान पाक में आता है। इसराफ करने वालों को मुसरफीन कहते हैं, तबजीर करने वालों को मुबज़िरीन कहते हैं और तर्फ करने वालों को मुतरफीन कहते हैं। तीनों को अलग अलग देख लें। इसराफ क्या है? किसी ऐसी जगह पर पैसा खर्च करना जो जायज़ है लेकिन वहाँ ज़रूरत से ज़ायद खर्च करना। समझ आ गई? इसमें हमारा सारा डेली का खर्चा, खाने पे खर्च कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत से ज़ायद, पहनने पे खर्च कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को लग्जरियस लाइफ बनाने में खर्च कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना। बिजली का बिल नज़र में रखिए, पानी का बिल नज़र में रखे। आप कहते हैं हमें तो पानी का बिल आता ही नहीं है, मिसाल है, अल्लाह के पास तो जमा हो रहा है ना, तो आप फील करेंगे कि जितना ज़्यादा आप इसराफ से बचेंगे आपको थोड़े में भी किफ़ायत होगी। मुझे तो अल्लाह के नबी की एक हदीस ने बहुत समझने का मौका दिया, दूसरों के हालात को भी और ख़ुद को भी अमल के लिए, मैंने सीधा रखने के लिए इस पर अमल किया। और वो क्या है? मा आला मन इक्तसित, यह हदीस उसी में भी जा सकती है म्याना रवि में, कि मा नहीं, आला गरीब होगा, मन जो इक्तसित जिसने दरमियाना रवि इख्तियार की। आप देखें कि कुछ लोग ख़ानदानों में भी ऐसे होते हैं सारी ज़िंदगी सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, मियाँ किसी छोटे से महकमे में जॉब करते हैं, चंद हज़ार की जॉब है, लेकिन आप देखते हैं कि सारी ज़िंदगी उन्होंने कभी किसी से नहीं मांगा, जैसे थे वैसे हैं और वो देन लेन भी कर लेते हैं, मेहमान नवाजी भी है, घर भी दिन ब दिन पहले से बेहतर ही दिखता है। उसकी वजह औरत का सुघड़ होना। मैं आपको ये बात जहाँ किसी की फ़ायदे के खातिर या एक उनके सदका जारिया के खातिर बताऊं, मैं ऐसी सिस्टर्स को जानती हूँ, और हमारे अपने करीबी लोगों में ऐसी खवातीन बहुत सारी हैं माशाल्लाह की, जो घर बड़ा अच्छा चलाती हैं, बहुत लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है। तो एक मौके पे जब मैं पाकिस्तान गई तो उन्होंने ऐसी कोई बातचीत हुई, तो मैंने कहा सुनाएं कैसा क्या हो रहा कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तब मुझे याद है कि नई नई बकरीद गुजरी थी, शुरू सर्दियों का वक्त था, तो मैंने कहा आप किस तरह मैनेज करते हैं ना, ऐसी बात हो रही थी। तो कहने लगी कि बड़ी ईद गुजरी है तो इस महीने बाहर से गोश्त नहीं आया, 700-800 का महीने का अगर गोश्त भी हम लगाते थे। तो कहती चूंकि मुझे पता था कि इस महीने गोश्त नहीं लेना, तो वो जो पैसे थे ना गोश्त के बजाय इसके कि वो बाकी चीजों में एक्स्ट्रा लगते हैं, मैंने उनका एक डिनर सेट खरीद लिया। ये है खूबसूरत तरीके से गुजारना। वो हर कुछ अरसे बाद बचत करके घर की कोई चीज बना लेते हैं, चाहे वो बर्तन बना लें, चाहे वो लेन देन की चीज है। कभी कभी कहते हैं कि अच्छा कभी थोड़े से पैसे बच जाए ना, तो कोई चीज सस्ती लगी हो, कोई सेल पे है, कुछ लेन देन, तो मैं इसलिए लेके रख लेती हूँ कि कल फुलां की शादी आ रही है। और हमेशा दूसरों से अच्छा देखा है मैंने उनको देते लेते हुए, जिनके पास है उनको चाहे फिक्र लगी हो कि क्या दें ना दें छोड़ दें, वो हमेशा अच्छा देंगे। क्यों? कि उन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो मैंने सीखा कि पैसा कम या ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। कई होते हैं उनके पास बहुत होता है, वो केयर ही नहीं करते, वो कहते क्या आप उठें जाएं फिर निकालें बर्तन, तो इतने बर्तन धोने पड़ेंगे, बैठे रहो। है फ्रिज में, अंदर क्लोजेट भरी हुई है, मासी नहीं है, चलो अब हम कहाँ जाए पूछें, चलो जो जूस पड़ा है वही पिला दें। कई लोग ऐसे होते हैं, और कुछ को तो वो कहते हैं चौ ही चढ़ जाता है, वो पहले से तैयारियां शुरू कर जाते हैं कि आपने आना है तो अब ये करें। फर्क किस बात का है? नंबर एक आपका दिल कैसा है, और दूसरी बात आपको सलीका कितना आता है। तो पहली चीज इसराफ, जरूरियात पे खर्च करना लेकिन जरूरत से ज्यादा करना। तबजीर इससे ऑपोजिट है, कि ऐसी जगह पे खर्च करना जहां खर्च करना जायज ही नहीं। मसलन शराब की बोतल लेनी चाहिए अगर सेल पे भी हो, सिगरेट पी रहे, सिगरेट पे 1 रुपया भी किसी का लगता है तो वो क्या है बताइए, इसराफ है कि तबजीर है? तबजीर है। या इस किस्म के और हराम जगह पर पैसा खर्च करना, ख्वाह जरूरत के मुताबिक हो या जरूरत से जायज दो, वो तबजीर ही होगा। और तर्फ ये है कि ऐसी जगह माल खर्च करना जहां ना फायदा हो ना नुकसान, ना जायज हो ना नाजायज, सिर्फ ये कि दिखावा हो रहा है हम पैसे वाले हैं, ये तर्फ है। मसलन सलामी में आप दुल्हन को 1 लाख रुपया दे रहे हैं, अगर वो रख लें तो कितना मजा है, वो जवाब में दुल्हा को दें 10,000 रुपये। लेकिन लोग क्यों लाख देते हैं देखना, लाख पे 5,000 ऊपर करके आना, लाख वापस रख लेंगे, असल में मैं 5,000 प्रॉफिट हो गया। ये तर्फ है। बड़ी बड़ी रकमें बांधना, इतने जोड़े 100 जोड़े मैंने इतना बनाना, देखिए कितना मैं सोचती हूँ। फिर बार बार ना चाहते हुए मिसाल शादियों की आती है, क्योंकि हमारा कल्चर शादी कल्चर है, हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद अपने बच्चों की शादी है। वो कहते हैं ना कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, हम कहते हैं मेरी जिंदगी का मकसद 3 बच्चों की शादी। फिर मैंने पहली शादी पे ये किया था तो अब दूसरी पे भी ये करना है। भाई वो वक्त और थे, आज कहाँ वक्त है। और यकीन करें मैं ऐसी माओं पे हमदर्दी रखती हूँ, लाड से चाओं से बच्चियों की शादियां करती हैं, बेटों की बरियां बनाती हैं ना मैं, तो बाद में बहुएं एक जोड़ा नहीं पहनती, ये आंटियों वाले हैं, ये तो स्टाइल ही नहीं है, हम मुझे तो ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं थे, मैं तो पहनती थी। और अगर सास की खुशी के लिए एक दफा गले से पहन के उतार दिया, कहाँ गया आपका वो 20-25 हज़ार रुपये का जोड़ा जो आपने लगाया, आपकी बहू ने पहना नहीं, अब आप तो पहनेंगी नहीं। ये लड़ाइयाँ होती मैंने देखी हैं घरों में, सासें रोती हैं कहती हैं इतने लाडों से बनाई थी चीज़ें, बहू कहती है मैं पसंद ही मैं पहनती नहीं, जूतियाँ सास ने ये ली, बहू कहती है मैं तो ऐसी पहनती नहीं, भाई स्वेटर ये ली, तो फिर ज़रूरत कैसे लाड देखने की, आप उन्हें क्या खुद बना लें, और जो आपने पहनने वो चीज़ बेहतर है कि बजाय इसके कि आप अपने अरमान देखकर। आज पाकिस्तान में इतनी डाइवर्सिटी है बिलीव मी, कि माँ भी आपका कपड़ा बना ले तो आपको यकीन नहीं होता कि माँ बेटी पहन लेगी, इतनी डिफरेंट थिंग्स चल रही हैं। दो इंतहाएं हैं, एक तरफ पैसा थोपा जा रहा है और दूसरी तरफ स्टाइल के ऊपर ब्रांड, कुछ कहते हैं मैं ब्रांड से नीचे पहनने ही नहीं है, और वो ब्रांड वाला ले आए तो कहते हैं ये लेके क्या आए हैं, जैसे किसी बच्ची की मंगनी हुई तो वो बड़े पैसे वाले लोग हैं तो वो बाद में बता रही थी इतने पैसे ले इतने ये वो लेके आए, तो वो नानी कहती है जो पहनाया था जोड़ा वो तो बेकार था, कहती बेकार नहीं था वो 1 लाख रुपए का जोड़ा था, वो ब्रांड का जोड़ा था। अब वो नानी को क्या पता इसमें, वो कहेगी इसमें मोती हो, कोई चमक दमक हो, कोई इसमें बहुत ही रंग रोंग हो, तो वो उन्होंने किसी ब्रांड, उन्होंने बस ब्रांड देख के बच्ची खुश होगी, मेरी सास मेरे लिए इतना ब्रांडेड जोड़ा लाएगी, उसको क्या लगे इसमें मोती हैं कि नहीं है। इतना फर्क है। मैं कहती हूँ इस वक्त तो आप सगी बहन को भी नहीं कह सकते कि तुम मेरे लिए बना लो और आपको पसंद आ जाए। इतना इस वक्त, जितना हमारे मुल्कों में इस वक्त इस पे रिसर्च वर्क हो चुका है, इतना मेरा हाल है कुरान हदीस पे भी नहीं हुआ हुआ। राइट, तो तब्जीर है, बेकार चीजें ढेरों ढेर ले लेके रखे हुए और बाद का निरा रोना, उठा के कौन लाए। मैं इन्हें कहती हूँ मेरे लिए तो कोई कपड़ा ही ना बनाए, पहले तो मैं कपड़े को हाथ में रखती हूँ कि इसका वजन कितना है। आप ये ना बनाया करें कि मैंने पहनना है, आप ये भी सोचा करें कि मैंने साथ लेके जाना है। अब 5 किलो का जोड़ा मैं साथ ले जाऊंगी, मेरी शिपिंग कितनी आएगी, मैंने पहनना भी है कि नहीं, इतना मेरे से इतना बर्दाश्त नहीं होता। राइट, आप 5 जोड़े बनाए जो 5 किलो में एक 5 जोड़े बन जाए, वो मेरे लिए बेहतर है जो मैं रोज धोऊं, मैं रोज पहनूं। फर्क होता है ना। यहाँ के आप देखिए बच्चियां जिस स्टाइल के कपड़े पहनती हैं, अमूमन हमारे पाकिस्तान वाले लोगों में वैसी चीजें कोई पहनता ही नहीं है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दिखावा है। लोग क्या कहेंगे, लोगों ने क्या कहना है, नहीं बनाए जी, नहीं दिए कपड़े, चलो भाग जाओ, तुम्हें क्या लगे, ऐसे ही तुम सर पे चढ़ रहे हो। तो ये दिखाना कि हम पैसे वाले हैं, ये तरफ है और मुतरफी इनका काम है। मुझे बड़ी मजे की बात याद आई, मैंने इसी ट्रिप में किसी से सुनी कि पहले दौर में आपको तो जब शादी होती थी तो दुल्हन को सारा जेवर पहना देते थे। हमने खुद देखा हुआ है अपनी मामियों को, दुल्हन आती है उसकी गर्दन ही झुकी होती है, एक तो शर्म की वजह से, एक वो 10 गले में सेट पहने हुए हैं, तो वो सेट पे सेट चढ़ा होता था लेकिन वो पहनाते थे। हमारी आंखों के सामने दुल्हन का तस्वर ही है, कांटे तो दोनों ही पहना सकते थे लेकिन गले में सारे पहना देते थे। फिर जहां जाना तो सासों ने कहना चूड़ियां पहनो, कड़े पहनो। तो एक आंटी थी तो वो सुनाने लगी, कहती जब मेरी शादी हुई तो सास ने बरी में जेवर जो भी दिए सो लिए। अब कहती होता क्या है कि जब भी कोई हमारे घर आता तो मेरी सास मुझे कहती जा जेवर पा क्या, तो वो जेवर पहनती थी। तो कहती कि फिर क्या हुआ कि शादी को काफी साल गुजर गए तो मेरे देवर के लिए लड़की देखने गए। खैर वो कहती कि ना मेरी सास मुझे कहती है कुड़ी वेखन चले हैं ते तू जेवर पा क्या, तो कहती सारा पा नहीं। अब मैं आपको अगली कहानी पहले नहीं सुना रही जो उन्होंने हमें पहले सुना दी थी। कहती अब मैं कहा अम्मी जी सारा तो नहीं इन्ना, नहीं तू सारा जेवर पा क्या। कहती मेरी सास ने मुझे चूड़ियां पहनाई, मेरे गले में सेट सूट पे ना पहनो के मुझे ले गई कि हम लड़की देखने जा रहे हैं। सास से ये दिखाना चाह रही थी कि हमने बहू कितनी खुश रखी हुई है। तो कहती जब हम वहां गए तो वो जो लड़की की वहां थी तो मुझे देखा मेरी, कहती अच्छा क्या हाल है, ठीक है। तो कहती ये हमारी बहू है। कहती अच्छा इनकी नई नई शादी हुई है ना। तो कहती नहीं, यानी 4 बच्चे हो चुके थे इसके बावजूद इतना देर। कहती शर्म मुझे आई कि वो मेरा हाल उलिया देख के मुझे कहती अच्छा इनकी आपने नई नई शादी की है अभी। तो आप पहने काम ज्यादा लेकिन दिखावा तो ना करें ना। तो दूसरों को क्यों मुश्किल में डालते हैं, ये दिखावा जो होता है ये बुतरिफ होना होता है, दूसरों से छुपाना चाहिए इन चीजों को, दिखाना नहीं चाहिए। फरमाया इन्नल मुबज़िरीन कान इख्वान शयातीन, ये जो नाजायज पैसा खर्च करने वाले हैं ये शैतान के भाई हैं। शैतान के भाई क्यों हो गए, इसलिए कि नाजायज जगह पर पैसा खर्च करना पैसे की नाकदरी और कुफरान नेमत है। फरमाई इन शैतान अली रब्बी ही कफूर, शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों की नाकदरी करता है यानी नाशुक्री करता है, कुफरान नेमत करने वाला है। तो मुबज़िर नाजायज जगह पैसा खर्च करने वाला शैतान का भाई होता है और वो भी अल्लाह ताला की दी हुई दौलत और पैसे की नाकदरी करता है। नकदरी है ना, देखिए ना एक ही जगह 10 लगाएंगे तो इस्तेमाल तो एक ही हुआ ना, तो 9 चीजों की नकदरी हो गई। तो लिहाजा सारी बात का इतनी जो पड़ी इसका खुलासा क्या निकला कि हम सबको अपने लिए बयाना रवि का रास्ता इख्तियार करना है। अपने लिए जो दिल करे वो करें, पहनने को दिल करे पहने, खाने को दिल करे खा लें, अच्छा रखें, साफ सुथरे रहें, घर को साफ रखें, सजाएं घर को, लेकिन दूसरों के लिए अपने आप को मुश्किल में ना डालें। मुझे लगता है रियाकारी और दिखावे वाला शख्स सबसे काबिल रहम है, कर दूसरों के लिए रह, खुद उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो अच्छे अच्छे तरीके से अपने अरमान पूरे करें, अल्लाह खुश होने को भी पसंद करता है। आप अपने हिसाब किताब से अपने स्टेटस के एतबार से काम करें लेकिन दिखावा ना करें, और इस बात की तो परवाह ही ना करें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की बातें ये बेकार बातें होती हैं। तो अखलाकियात के टॉपिक का आखिरी टॉपिक हम करने लगे हैं, कनूतियत। कनूतियत क्या है, इसको आप सूरह जुमर की आयत से समझ लें, या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीअ। ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाह इकट्ठे सारे के सारे मुआफ कर देता है। तो भयानक सिफत क्या है, कनूतियत, नाउमीदी। अल्लाह का वो बंदा जो इबादत कर रहा हो इस सिफत से बच जाता है और वो है कनूतियत, मायूसी। यानी ये कहना अल्लाह ने मुझे बख्शना ही नहीं, अल्लाह ने तो मुझे माफ़ ही नहीं करना, ऐसा शख्स जिसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ नहीं, राबता नहीं, और वो अल्लाह ताला से अगर कुछ मांगता भी है, कोई ताल्लुक़ कायम करता है, दुआएं करता है, तो फिर उसके बाद नाउमीद नहीं रह सकता। तो अल्लाह से मायूस होने का नाम कनूतियत है, और ऐसा शख्स अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखे अगर तो मायूस नहीं होगा। क्या पता चला सारी बातों को अगर आप जमा करें, ये टॉपिक यहाँ पूरा हो रहा है कि अकायद और इबादात की दुरुस्तगी के बाद अल्लाह ताला इंसान में ऐसी हसीन सिफात पैदा फरमा देते हैं जो इसके बुलंद अखलाक की बुनियाद बनती है। इसी तरह से यही अकायद और इबादात इसकी ज़िंदगी से बुरी सिफात यानी रज़ाइल, रज़ाइल किसको कहते हैं, नापसंदीदा, इनका इजाला कर देते हैं, यानी रज़ाइल चीज़ें बुरी सिफात को ख़त्म कर देते हैं और अखलाकी कमज़ोरी से इसे पाक और साफ़ कर देते हैं। यही बात तकवा और तज़किया का पेश खेमा है। तमाम मुफसरीन कहते हैं कि यूं भी कहा जा सकता था कि या अय्युहल इबादुल्लज़ीन असरफ़ु, आयत तो ऐसे भी बन जाती ना, कह वो लोगों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर रखा, मगर ऐसा नहीं कहा। पहले कहा या इबादी, मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो। ये बिल्कुल ऐसी जैसे वालिद अपने बेटे को डांटने और डांटने से पहले कहे कि मेरे प्यारे बेटे जरा बात तो सुन। डांट की इब्तिदा प्यार से करे, ना उम्मीदी से नहीं। ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर रखा है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीया, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह ताला इंसान के सारे गुनाह इकट्ठे ही माफ कर देता है। तो ये था अखलाकियात का टॉपिक जिसने हमें ये सोचने पर माइल कर दिया कि हम दूसरों के साथ कैसे हैं। और आपने नोट किया होगा जब हमने अकायद के बारे में पढ़ा और इसी तरह से हमने इबादात के मामले में पढ़ा तो ज़्यादा दिल, नीयत, इनर की बात हुई, अंदर क्या होगा। लेकिन अब ये जो हमने अखलाकियात का टॉपिक पढ़ा और जो अगला बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मामलात का, तो उसको पढ़ के आपको आउटर साइड दिखेगी। जिस बंदे को दीन का इस तरह का फहम हासिल हो जाए, आपको क्या लगता है कि फिर वो इंसानों को परखने में गलती खा सकता है? वो गलती नहीं खाता, उसको फिक्र लग जाती है कि भाई ये क्या हो गया, ये गलत कॉम्बिनेशन है कि आप जाहिर में किसी को कुछ और समझे लेकिन बातिन में वो कोई और हो। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें आला अखलाक वाला बना दे और अल्लाह ताला हमसे इस तरह से राजी हो जाए, बल्कि एक दुआओं में एक दुआ शामिल कर ले कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि तू मुझे कल देखे तो तुझे मुझ पर प्यार आ जाए। और याद रखिए कि जन्नत का असल हुसन वहां के लोग हैं। ये जितनी सिफात आपने अखलाकियात में पढ़ी है ना, ये जन्नती लोगों की सिफात है। तो अगर दुनिया में ये सिफात आप में आ जाएं तो आप चलते फिरते जन्नती हैं। वहां जाकर जो हमने बेजरर बनना है तो यहां बन जाए, वहां जाकर जो हमने खुश रहना सीखना है तो यहां सीख लें, तो आप देखेंगे कि इंसानों की ये दुनिया जन्नत बन जाए अगर ये अखलाकियात के मामला उनमें आने लगे और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।